দেখে এই কোন কাজ কম নেই, ঘুরে ঘুরে খেয়ে ঘুরে ঘুরে খেয়ে বেড়াও। হ্যাঁ খরে ভিক্ষা মারতে এসে গেছে, দেখেই দেখে দেখেই গালাগাল দিতে আরম্ভ করলাম। গুরুদেবে চাচির হর্ষ দূর থেকে দেখে, ও হতে কিছু নেওয়ার জন্য দেখে মন দুঃখী হয়ে গেল, দুঃখি না মেগে বসে বা দেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দিলাম, তাকে দেখে আদর করলাম না। বলে এইরকম ভাবে বৈষ্ণব অপরাধ হয়, বলে ইয়ে ছয় জন লোকের পতন হয়। অতএব পিপলায়ন ঋষিরা তো এলো, কিন্তু দেখে ইয়ে হা হা আর হিহু গন্ধর্ব, তার সম্মান করেনি বৈষ্ণবদের, সম্মান না তারা ধরুন, তখন পিপলায়ন ঋষিদের মধ্যে ক্রোধ জন্মে, তখন তারা ওদেরকে অভিশাপ দিয়ে, বলে যাও তোমাদের অভিশাপ দিচ্ছি, হ্যাঁ তোমরা বৈষ্ণবদেরকে দেখে সম্মান করলে না, যাও তুমি বাঘ হয়ে থাকবে, বাঘ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ঋষির এই যে হাহা যে খুব গন্ধর্ব, তারা পিপলায়ন ঋষিদেরকে দেখে সম্মান তারা মনে মনে করেছিল, উপরে থেকে তো করে নাই কিন্তু মনে মনে প্রণাম করেছিল। তখন গন্ধর্ব যখন দেখলো অভিশাপ দিয়েছে, বলে প্রভু আপনার তো সর্ব অন্তর্যামী, আপনার তো সবকিছু জানেন, আপনাদেরকে আমি মনে মনে আমি প্রণাম করেছি কিন্তু উপর থেকে করতে পারেনি, অথবা আপনি দয়া করে ক্ষমা করুন। বৈষ্ণবরা তো দয়ালু কৃপালু, হ্যাঁ বৈষ্ণব যদি যদি অভিশাপ দিয়ে তাতেও জীবনে জানা আছে। এই জন্য নারদ ঋষি যাদের যাদের বড় বড় ঋষির অভিশাপ দিয়েছে তাদের কখন অমঙ্গল হয়েছে তো মঙ্গল হয়েছে। তখন দেখলো ঠিক আছে অভিশাপ দিয়ে যাও, তোমরা ব্রজে বাঘ তো হবে কিন্তু ব্রজেই বাঘ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমিও আসবো। তখন একদিন কি হয়েছে, একটি গরু দত্তের কাছে ঘাস খেতে খেতে এইখানে এসছে, যখন এইখানে এসছে তাকে দেখে তখন এই বাঘ তখন তাকে আক্রমণ করেছে। যখন আক্রমণ করছে খাওয়ার জন্য, তখন এই বহুলা নামক যে গাভী ছিল তিনি বলল, প্রভু আপনি আমাকে খেয়ে ফেললু কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু বাড়িতে আমার একটা ছোট বাছুরু আছে, যদি আপনি আমাকে খেয়ে ফেলবেন অতএব সে তো কান্নাকাটি করে দুঃখী হবে, আপনি আমাকে অল্প সময়ের জন্য আপনি আমাকে সময় দিন, আমি বাড়িতে গিয়ে বাছুরুকে দুধ খাওয়িয়ে তারপর আমি চলে আসবো, বা তুমি যদি না আসো বলে আমি কখনো মিথ্যা কথা বলছি না। অতএব তিনি বাঘ দেখলে কোনো ছাড়ে কাকে, এদিকে বাঘ দেখে ছাড়বে, তুমি ছেড়ে দিলে কি করে, কিন্তু বাঘ ছিল না। হ্যাঁ এই জন্যে গরু কখনো কথা বলে, কিন্তু গরু কথা বলছে। আচ্ছা এখানে গরু সাধারণ নয়, এখানে গরুকে গরু এখানে এখানে নারদ স্বয়ং এখানে গরু আর বাছুর রূপে এখানে এসছে, আর যখন বাড়িতে গিয়েছে বাছুরকে দুধ খাওয়াছে তখন গরুটা ব্রাহ্মণকে বলেছে, বলে ব্রাহ্মণ দেবতা আমার আজকে শেষ দিন, আমাকে একটা বাঘ ধরেছিল কিন্তু আমি আপনাকে বলার জন্য বাছুরকে দুধ খাওয়াবার জন্য একটু সময়ের জন্য আমি এসেছি, আচ্ছা এইটা হলো আমার শেষ দর্শন আপনার। তখন সেই ব্রাহ্মণটি বললো আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি চলো। তখন ব্রাহ্মণটি তখন গরুকে এবং বাছুরকে নিয়ে এইখানে এসছে, তখন এইখানে এসে যখন এসেছে তখন তারা ভগবানকে স্মরণ করছে। নারদ তিনি এই জিনিস দেখে তিনি কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলছে, প্রভু একটি গরুকে খাওয়ার জন্য আপনার ধামে একটি বাঘ আক্রমণ করছে। তখন ভগবান কৃষ্ণ এখানে প্রকট হন, প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঘের হৃদয়ে যে হিংস্র ভাব ছিল সেটা দূর হয়ে যায়, কেননা ওই গন্ধর্ব এখানে বাঘ হয়েছিল। তখন কৃষ্ণ কৃপায় বাঘের উদ্ধার হয়, গাইকে উপরেও কৃপা হয়ে সবাই উদ্ধার হয়। এই জন্য এখানে এই বহুলা গাভী এখানে চড়তে চড়তে এসেছিল, এই জন্য এই স্থানের নাম হলো বহুলা বন। আর এই বহুলা বনের অন্তর্গত হলো রাধা কুণ্ড। এই কিছুদিন আগে বহুলা অষ্টমী গেল না, বহুলা অষ্টমী গিয়েছে, এই বহুলা অষ্টমীর রাধা কুণ্ড প্রকট হয়েছিল। অতএব ওই দিনে রাধা কুণ্ড স্নান করার বিশেষ ফল, যদি ওই দিন কেউ যদি রাধা কুণ্ডে স্নান করে তিনি রাধা রানীর দাসী হয়ে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্য সেবা করেন। অর্থাৎ এর অন্তর্গত হলো রাধা কুণ্ড শ্যাম কুণ্ড এই বনের অন্তর্গত। আপনারা মনে করুন এই বনের কত মহত্ব, এই বনের অনেক মহত্ব এই বনের। এবং চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা আসছে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু, আমি বাংলা বললাম হিন্দি বলছি, চৈতন্য মহাপ্রভু যখন ঘুমতে ঘুমতে আয়ে, যখন ঘুমতে ঘুমতে ও আয়ে, যখন आए। ये स्थान संपूर्ण रूप में राधा कृष्ण का लीला भूमि को द्वारा अभिषिक्त भूमि। सर्वत्र ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर श्री प्रिया प्रियतम अपना प्रेम माधुर्य को द्वारा और राधा कुंडों का अंतर्गत समझो ये वन की कितने महत्व है, जहाँ पर जिस राधा कुंड श्याम कुंड को पृथ्वी का सर्वोत्तम स्थान बताया गया। इसलिए महाप्रभु जब इसी वन में घूमते घामते आए, एकदम यहाँ के गैया तो महाप्रभु को देखकर विभोर हो गए, चारों तरफ में महाप्रभु को घूम गए। फिर क्यों कहते तो महाप्रभु कौन है? कन्हैया। अभी राधा रानी का भाव तो लेकर के आए है तो कृष्ण, और वही कृष्ण कन्हैया यहाँ पर सखाओं को लेकर गैया चराते थे। सारे को सारे गैया तो महाप्रभु को घेर गए और महाप्रभु प्रेम में विभोर होकर मूर्छा हो गए, तो गैया उनको चाटने लग गए और उनको भगाने पर भी गैया नहीं भागते। कहते क्यों कन्हैया को कहाँ छोड़ेंगे, वही तो वही कन्हैया राधा जी को भाव को लेकर के आए। जब किसी तरह से छोड़े नहीं, बड़े कठिन से गैया को यहाँ से भगाए और यहाँ पर जितने सारे सूख पक्षी पीकर जितने सारे चिड़िया थे वो भी महाप्रभु को देख करके वही कृष्ण है, इसलिए उनको दर्शन करके सबके सब प्रेम में विभोर हो गए। और महाप्रभु यहीं पर आ करके देखा पेड़ गोबर में एक तोता और मैना बैठे हुए। तोता तो बैठा हुआ हाँ कौन सा पेड़ गोबर, आम के पेड़ ऊपर में, और अंगूर के पेड़ ऊपर में देखा मैना बैठी हुई। इतने में सुख सारी संवाद हो रहा है। सुख ने कहा सारी तेरे को पता है हमारा कन्हैया कौन? बोले कन्हैया क्या है? कहते मेरे कन्हैया मदन मोहन है। इतने में सारी बोलती है ज्यादा बोलो मत अपना चुप रहो, तब तक कन्हैया मदन मोहन नहीं जब तक मेरी किशोरी इनको बाम तरफ में नहीं हो। कृष्ण जब अकेले हो उसी समय केवल मदन है। अगर हमारे राधा रानी अगर बाम तरफ में खड़ी नहीं हो वो मदन को मोहित नहीं कर सकते। जब राधा रानी कृष्ण को बाम तरफ में खड़ी होती है तब श्याम सुंदर तो है तो सुंदर, लेकिन राधा रानी खड़े होने पर तब पूर्ण रूप में कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य छिटकता है। इसलिए सत चीत और आनंद ये तीनों को लेकर कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण है। अगर वहां से सत और आनंद घटा दिया जाए कृष्ण उसी समय चीत रूप में केवल निर्विकार निर्विशेष स्वरूप में केवल ज्ञानियों को उपासक है, उसी समय कृष्ण रसिकों को उपासक नहीं। इतने में हमारे तोता ने कहा कि जानते हो मेरे श्याम सुंदर कौन है? कहते कौन है? कहते श्याम सुंदर को सिर में मोर पंख है। तब तोता बोलती है आपको पता है कृष्ण क्यों मोर पंख धारण करते हैं? बोले क्यों? कहते उसमें श्री किशोर जी की नाम लिखा हुआ है इसलिए श्याम सुंदर धारण करते हैं। तोता ने कहा जानते हो हमारा कृष्ण कहाँ पर खड़े होते हैं? बोले कहाँ खड़े होते हैं? कहते कदमों को पेड़ में नीचे खड़े रहते हैं। कहते जानते हो कन्हैया क्यों वहां पर जाकर खड़े रहते हैं? बोले क्यों? कहते एक में तो कदम का जो स्वरूप है वो राधा जी का स्वरूप है और दूसरा कारण राधा रानी वहां आती है ना, इसलिए वो राधा रानी को साथ में मिलने के लिए श्याम सुंदर वो पेड़ को नीचे खड़े रहते हैं। इतने में तोता ने कहा जानते हो हमारा श्याम सुंदर कौन है? कहते चांद है। कहते चांद है? कहते हाँ। कहते जानते हो मेरी राधा रानी क्या? बोले कौन है? कहते चांद को पकड़ने वाले चांद है। मतलब वो चांद को अगर पकड़ना हो कहते कैसे चांद को पकड़ सकते हैं? कहते राधा रानी को द्वारा ही वो चांद को पकड़ा जा सकता है, नहीं तो चांद को पकड़ना कोई साधारण बात नहीं। इसका मतलब है अगर कृष्ण को अगर कोई पाना चाहते हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं कृष्ण को अगर आसानी से कोई पाना चाहता है, कृष्ण कितने टेढ़े आपको पता है? बहुत टेढ़े हैं। कहते वो टेढ़े को अगर पकड़ना चाहते हो एक सबसे सरल उपाय है। कहते सबसे सरल उपाय क्या है? कहते राधिकार दासी यदि हरे अभिमान शीघ्र मिले तवे गोकुल का। हाँ, कृष्ण को पाने का केवल एक ही उपाय है, राधा रानी की दासी का अभिमान हो जाए। हम राधा रानी की दासी है। राधा रानी की दासी तो बनना बहुत कठिन है, लेकिन पहले हमें अपना गुरु जी का ही दास बनना पड़ेगा। अगर गुरु जी का कोई दास बन गए तो फिर गुरु जी लेकर हमको राधा रानी तक फिर पहुंचा देंगे। क्योंकि उनके अंदर में ऐसे वाद विवाद हो रहा था। सुख बोलता है जानते हो हमारा श्याम सुंदर कैसे खड़े है? कहते त्रिभंग ललित तो है ही है, लेकिन वो बाम तरफ में झुके रहते हैं और उनका जो मोर पंख है ना वो बाम तरफ में झुका हुआ रहता है। सारी बोलती जानते हो क्यों कृष्ण बाम तरफ में झुके और उनको मोर मुख ने क्यों बाम तरफ में झुका हुआ रहता है? बोले क्यों? कहते बाम तरफ में राधा रानी ना, राधा रानी के चरणों को पाने के लिए, इसलिए श्याम सुंदर बाम तरफ हुए रहते। कहते ये जो चीज है हमारे गोविंद लीलामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसको वर्णना करते हैं। सुख वहां पर बोलता है, कहते सौंदर्यम ललनादि धर्ज दललम लीला रमा स्तंभिनी बिरज्याम कंदुलिकाद्रि बिरज्य मामला पारे परार्ध गुणम। यहाँ पर सुख बोलता है, कहते सारी का तुमको पता है? बोले क्या पता है? कहते हमारा कन्या कितने सुंदर, कैसे? बोले कैसे? कहते सौंदर्यम ललनादि धर्ज दलनम, जब हमारे श्याम सुंदर कहीं प्रकट हो जाते हैं उसी समय ब्रज गोपियां अगर कन्या को देख लिया कहते धैर्य दलनम, उसी समय गोपियां उनका जो धैर्य है हाँ, कहते स्त्रियों का अंदर में एक विशेष चीज है, बोले क्या है? बोले लज्जा है हाँ, लज्जा के द्वारा ही सब कुछ होता है। लेकिन जब ब्रज गोपियां कृष्ण को दर्शन करती है कहते उसी समय अपना धीरज धारण नहीं कर पाती है, कृष्ण को दर्शन करते ही धैर्य भर्ज पता नहीं कहाँ चला जाता है, और कृष्ण को पाने के लिए कन्या ने बंसी बजाए तो सर धैर्य दलन हो करके जिधर बंसी की ध्वनि आई ब्रज गोपियां उस तरफ में भागने लगी। कहते धैर्य दलनम और लीलाम, कहते उनको लीला कैसे? कहते लीला रमा स्तंभनी, कहते उनको एक अद्भुत एक लीला है जिसको तो रमा मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी स्वयं भगवान की रास लीला की कथा सुनी तो उन्होंने बिहाय कामान सुचिर धृत व्रता, उन्होंने अपना वैकुंठ नारायण को छोड़ करके कठोर तपस्या कर रही है, ऐसे कृष्ण के अंदर में सुंदरता है। कहते उनके अंदर में ताकत कितना है, कन्या में कितने शक्ति है? कहते शक्ति कौंडल्याद्रि, कहते साक्षात गिरिराज गोवर्धन कितने बड़ा है? कहते 7 क्रोध गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने किस रूप में धारण किया? जैसे एक छोटा बच्चा एक कंदुक, कंदुक मतलब होता है कि बल, फुटबॉल, जैसे एक छोटा बच्चा के फुटबॉल लेकर के गेंद को लेकर उछालता है आसानी से ही, कहते श्याम सुंदर ऐसे इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को एक साथ 30 तक कनिष्ठ अंगुल में एक प्यार में खड़े होकर के 7-7 दिन तक, 7 साल का लड़का उनके अंदर में, ये उनके अंदर में बिरजिया मतलब बलवान कितने इसके अंदर में, कहते पारे परार्थ उत्तम, कहते कृष्ण में कितने गुण है, अद्भुत खरबुद गुण है जिस गुण की कोई सीमा नहीं, सारे गुण विश्व ब्रह्मांड में सारे गुण का मूल आकर श्री श्याम सुंदर है, और उनको जो लीला सर्व व्यक्तियों को चर अचर हाँ, कहते कृष्णा धन्य को वा लता सो भी प्रेमदो भवती, कृष्ण को छोड़ करके ऐसे कौन सा अवतार हुए हैं जो लता पताओं को भी प्रेम को प्रदान करने वाले। शोक ने बड़ी बड़ी कन्या की महिमा बोले, सारी ने बोला ज्यादा बोल लिया, चुप रहो, अभी बोलते जा रहे कन्या कन्या ही जैसे कन्या, तुमको पता नहीं हमारे किशोर जी कैसे है, तुमको पता है हमारे किशोर के अंदर में कितने गुण है, चुप रहो ज्यादा बोलो मत, बोले क्या गुण बताओ? इतने में सारिका बोलती है, श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गायन तुरिता गुणालिप्सन्त कविता च राजते जगन मोहन चित मोहिनी। हाँ तुम्हारा श्याम सुंदर में बहुत गुण है हमको पता है, लेकिन हमारे राधा जी के अंदर में कम गुण नहीं, बोले क्या है? कहते राधिकाया प्रियता, कहते उनके अंदर में जो प्रेम माधुर्य है, जिस प्रेम माधुर्य को कृष्ण स्वयं जिनका प्रेम का कोई था नहीं पाते हैं, जैसे श्याम सुंदर जब लीला करके जब उन्होंने हाँ लीला को अंतिम में जब गोलक में गए कुंज में कृष्ण बैठ कर क्या सोच रहे थे बताओ? क्या सोच रहे थे? उसी समय यही सोच रहे थे, मैं अखिल रसामृत मूर्ति सारे रस का मैं मूर्तिमान हूँ, मेरे मन में जो कुछ इच्छा था सब कुछ मैंने तो आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरे दिमाग का ऊपर से निकल गया, एक चीज में मैं तो समझ नहीं पाया। बोले क्या है वो चीज? कहते राधा राधा या प्रणय महिमा की दृश्यम, राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है जिसके अंदर में मादनाख्या महाभाव है, जहाँ पर कृष्ण भी जिस चीज को स्पर्श नहीं कर पाते, कृष्ण भी जिस चीज को आस्वादन नहीं कर पाते उनके अंदर में, ये माधुरी माँ कृष्ण, ये प्रिय माधुरी माँ कृष्ण, ये राधा रानी के अंदर में जिस प्रेम माधुर्य में कृष्ण स्वयं आकृष्ट होकर के कलयुग में कृष्ण राधा राधा रानी के अंग कांति और भाव को लेकर के आते हैं। इसलिए श्याम सुंदर जिनका प्रेम का कोई था नहीं पाते हैं श्याम सुंदर, बोले उनका अंदर में कहते उनको स्वरूप को जानते हो, कृष्ण कितने राधा रानी कितने सुंदर है। हाँ कृष्ण तो सुंदर है लेकिन राधा रानी के सामने कुछ नहीं। इसलिए राधा रानी को देखते ही कहते बंसी करार निपति स्खलितम सिकंदम भ्रष्ट पीत वसनम ब्रजराज सुनो। तब तक तो कन्हैया स्थिर रहते हैं, कब तक स्थिर रहते हैं, जब तक राधा जी को दर्शन नहीं करते हैं। राधा जी को दर्शन करते ही उनको मर पग गिर जाता है, पीताम्बर कब खिसक जाता है पता नहीं चलता, कृष्ण का शरीर में पसीना पसीना आ जाता है, कृष्ण बेहोश हो जाते हैं। और राधा रानी अगर एक कृपा कटाक्ष एक टेढ़ी नजर में देख ले तो वहां उस कन्या तो बेहोश हो जाते हैं। पता है हमें राधा रानी के अंदर में कितनी महिमा है, कहते उनको सुशीलता को जानते हो, कृष्ण कृष्ण सोच रहे हैं सारा दुनिया मेरे को स्पर्श करने के लिए पागल है, मैं इतने मेरे अंदर में सुशीलता इतने ठंडा, लेकिन मैं स्वयं राधा रानी को जब स्वस्थ करता हूँ, राधा रानी को स्पर्श करते ही पता नहीं मेरा क्या हो जाता है, राधा रानी का स्पर्श करने के लिए मैं पागल बन जाता हूँ, इतने सुशीलता से राधा रानी। कहते उनका नर्तन, हाँ कहते उनका नर्तन कभी राधा कृष्ण के अंदर झगड़ा हो गया, कौन अच्छा नाच सकते हैं। कृष्णचंद्र ने नृत्य किया, कृष्णचंद्र जब नृत्य किया वहां पर जितने जंगम जंगम मतलब जितने चलने वाले वो सबके सब द्रवीभूत होने लग गए और सारे देवता लोग सब सखा लोग खूब ताली बजाए। इतने में राधा नृत्य शुरू की, राधा रानी का नृत्य में इतने मधुर में था उनको भजन और नृत्य में कीर्तन में, कहते वहां पर जो कहते जो स्थावर है इसमें तो जंगम चलने वाले सब द्रवीभूत हो गए, लेकिन राधा रानी का कीर्तन और नृत्य में कहते स्थावर स्तंभीभूत हो गए। हाँ सबके सब सब पत्थर पिघलने लगे, पेड़ में मधु चरना शुरू हो गया, सबके सब द्रवीभूत हो गए। जब उनका अंदर में ऐसे नृत्य विधा है, उनके अंदर में ऐसे गुण है, इसलिए कहते राधा रानी का महिमा तुमको पता नहीं, खूब जोर से झगड़ा होने लग गया, वो इधर बोले इधर बोले। इतने में फिर सब सखियों ने आकर के बोले सुख सारी, बोले भैया झगड़ा करके कोई लाभ नहीं, थोड़ा कृष्ण भी सुंदर है हमारे राधा रानी भी सुंदरी है, लेकिन कृष्ण अकेले रहो सुंदर तो है लेकिन राधा रानी जब होती है विशेष सुंदर हो जाती है। राधा रानी जब अकेली है तो सुंदरी, लेकिन जब श्री श्याम सुंदर के साथ में हो फिर तो उसमें दोनों ही ज्यादा ही सुंदर हो जाते हैं। इसलिए झगड़ा करे कोई लाभ नहीं, तुम्हारा किशोरी और हमारा किशोर दोनों को मिला करके उनका प्रेम रस में ही डूबे तो उसी में ही आनंद है, फिर तो उनके अंदर में झगड़ा किसी तरह से शांत हुआ है। इसलिए महाप्रभु कहीं पर आकर के इस लीला में मुक्त हो जाते थे। इसलिए ये स्थली ये जो कुंड है इसका नाम संकर्षण कुंड है, और यहाँ पर और एक मान सरोवर भी है, यहाँ पर दो कुंड है। इसलिए कभी ये कुंड में जो स्नान करे, क्योंकि ये बहुलावन का अंतर्गत है और ये बहुलावन राधा कुंड का अंतर्गत, कहते हैं कुछ भी कामना को लेकर के अगर इसी कुंड में कोई आचमन स्नान करे तो ये कुंड आपकी मन की सारी इच्छा को यही कुंड पूरी कर सकती है। इसलिए अब लोग अपना हम लोग का केवल एक काम है राधा दास्य गुरु जी की सेवा, वैष्णव की सेवा ही हमारा जीवन की मूल उद्देश्य है। बच्चा अकल उधर व्यस्त कृपा बच्चा बच्चा नाम पावने भो वैष्णव भो नम गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सुदालो
হরিকার মাঝখানে উঠছে নেই, যদি নারে নিজেতে ইচ্ছা হয় তাহলে পাশের উঠবে।
সুচা বাচ্চা তো ফেন মেনে বকে উঠলে পরে
দুগার বিখ্যাত তো
feeding them with sticks, move, move, slapping them on their flanks, and the cows wouldn't go. Licking, licking. Finally, they got them to move. Then, after that, the deer and some other wild animals came up as well. And deer are so sweet. Have you ever been licked by a deer? Do you know how soft a deer is? One time I went to a petting zoo in San Francisco in America, and there was a little baby cute deer, so sweet. And you put your hand out, and the little deer goes, and it's so soft. You just want to hug that little deer. They're so sweet. And the deer were so in affection and love with Mahaprabhu that they were just licking him with their little soft tongues all over his arms and his legs, feeling great, great pain. And then gradually, after some time, they also left. So Mahaprabhu, in this mood, was wandering, and all of a sudden, he gazed up on a branch, just like there. And there was a parrot, two parrots, one shuk and one sari, one male and one female. And they were having a delightful argument. This could only happen in the presence of Mahaprabhu. And the male parrot was saying, "Oh, my Krishna, he's so beautiful. He's Madan Mohan. He's the enchanter of Cupid." And the female parrot said, "Only because my Radhika stands on his left side. Therefore, he becomes so beautiful. Without my Radhika, he is only Madan." So, the male parrot says, "Oh, but my so powerful and strong, he lifted Giriraj Govardhan with his left finger." And the female parrot said, "Oh, yes, yes, he did. But only because my Radhika gave him the shakti and the power to do so. If it were not for her crooked glance at Giriraj Govardhan, telling him, if you fall even one inch, we will burn you to ashes. Otherwise, Krishna could never have done it." So, God says, "Okay, but my Krishna, he wears a peacock feather. And he's very beautiful with that peacock feather." And the female parent says, "Oh, there's a peacock feather. The peacock feather is decorated with the name of my Radhika on it. And if you look at a peacock feather, it's got the shape of the Sanskrit letter, is it R? For Radhika. Radha. Just like that. I was always looking for the English. You know, I said, I don't see the name of Radha on its feather." And then someone said, "It's in Sanskrit, so..." Oh, transcendental language. It's a special language. Anyway, it's there for those who have the eyes to see. Very beautiful. "Oh, yes, but it's so jaunty. It clicks to the left. He's so suave and daring and so well-dressed, and he tilts that peacock feather to the left. Oh, but why? Because the peacock feather is bowing down to my Radhika, who stands there. Oh, but my Krishna, he is the life of the whole universe. Oh, but my Radhika, she is the life of his life. Well, my Krishna is the moon itself. Oh, but my Radhika, she is the enchanter of that moon." So, finally, the male parent says, "Oh, let's not argue on and on. Let's agree to glorify Krishna, Radha and Krishna together. Yes, yes, we shall do that." So, simple, beautiful place, Mahulavan. Mahaprabhu was here, the Mahula cow, and right over there, if you look in the temple, there are still little deities of a cow, of a tiger, and who else is there?
Cat.
Oh, the Brahmin. Yes. Okay. Let's check over to the wish chart. Now, Bangala!
Gitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Raja Vrindavan Vihari Lal Ki Laddu Char Kachori Chai हमारे पंडित को तो प्रणाम दीजिएगा वहां पर जो मंदिर में दिया फिक्स कर लीजिए
बहुत कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण
Live on the internet. You want to say anything?
What? Is this what you're doing?
Please, phone is live on.